नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनकी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा सृजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज शिमला में 26 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 में समायोजन और स्वास्थ्य विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित तंबाकू मुक्त युवा अभियान के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इस क्षेत्र में लगातार बड़े बदलाव किए जा रहे हैं।
हेल्थ केयर सेक्टर हेल्थ की प्रायोरिटी हमारी सरकार की है और निश्चित रूप से अभी हमने 200 डॉक्टरों की भर्ती की, स्पेशलिस्ट की भर्ती की, मेडिकल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं और ये लेटेस्ट एडवांस 26 एम्बुलेंस सारे बीएमओ ऑफिस में भेजी गई है और सब जगह अब हमारे जो एम्बुलेंसेज है एडवांस उसमें कुछ जगह कहीं रहेगी होगी तो उसको भी पूरा किया जाएगा। और युवा नशे से दूर रहे इस सिलसिले में एक आज जागरूक रैली का भी आयोजन किया गया है और उस आयोजन के माध्यम से युवाओं को तम्बाकू मुक्त और नशे से मुक्ति के लिए इस प्रकार का आज किया गया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के भाई की गिरफ्तारी पर कहा कि सरकार ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 22 तारीख को जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी। इसका समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। प्रदेश में उत्पादित होने वाले काला जीरा और चूली तेल पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% की गई है, जिससे किसानों को लाभ होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
नए जीएसटी सुधारों ने हिमाचल प्रदेश के किसानों और उद्योगों को जीएसटी में कटौती कर बड़ी राहत दी है। नई जीएसटी दरों के तहत राज्य में उत्पादित वस्तुओं जैसे काला जीरा और चुल्ली तेल पर कर की दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इस बदलाव से इन उत्पादों की खेती और प्रसंस्करण में लगे किसानों और ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा। इसी तरह सेब की खेती करने वाले किसानों को भी पैकेजिंग सामग्री जैसे कार्टन और ट्रे पर कर की दरें घटने से फायदा होगा, जिससे फसल के मौसम में कुल खर्च कम होगा। इसके अलावा कृषि उत्पादों पर जीएसटी में कमी से किसानों को अधिक समर्थन मिलेगा, ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी और राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश एक मजबूत बाजार के रूप में उभरेगा।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हर विभाग और हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में अब तक 7000 नियमित भर्तियां की जा चुकी हैं। इनमें जेबीटी से लेकर कॉलेज कैडर के प्रिंसिपल तक की नियुक्तियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार हुआ है और आज हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि खेल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा है कि खेलों के माध्यम से जहां शारीरिक विकास होता है, वहीं मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास, टीम भावना और अनुशासन की भावना का भी विकास होता है। धर्माणी आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ओहर में 3 दिवसीय अंडर 14 जिला स्तरीय छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। राजेश धर्माणी ने कहा कि खेल मैदान विद्यार्थियों के जीवन का अनिवार्य अंग है, जो उन्हें जीवन में कठिन परिस्थितियों से जूझने और सफलता पाने का मार्ग सिखाते हैं। इस प्रतियोगिता में बिलासपुर जिला की लगभग 400 छात्राएं कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, हॉकी, जूडो और कुश्ती जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। सेना भर्ती कार्यालय शिमला के भर्ती निदेशक कर्नल मनीष सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिलों के ऑनलाइन परीक्षा पास उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले युवा ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती रैली का आयोजन पृथ्वी मिलिट्री स्टेशन अवेरी पट्टी रामपुर बुशहर में 17 नवंबर से 24 नवंबर के बीच किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पर जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, आईएनओ स्तर पर जांच L1 की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तथा डीएनओ एसएनओ स्तर पर जांच L2 की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।